अपन ने पूरे तीर्थंकर लिख लिया था, बलभद्र नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती ये शलाकापुर उसके सब हो गए। अब ये रह गए इसमें तीर्थंकर के माता पिता। तो तीर्थंकर के माता पिता की भी एक क्वालिटी होती है उनकी स्पेशल, कि उनके भी आहार तो होता है, निहार नहीं होता, मतलब मन मूर्ति की बाधा नहीं होती तीर्थंकर के माता पिता को भी। और जिस तरह से सामान्य अपन जन्म लेते हैं माँ से, वैसा जन्म नहीं होता, उसमें माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी तरह से भी। और वो बहुत स्पेशल उसका वर्णन है, वो पढ़ने लायक, कि किस तरह से वो जन्म ले लेते हैं। बहुत एग्जैक्टली काफ़ी वर्णन उसमें किया कि माँ को कितनी क्वालिटी, मतलब बेटे के आने से तीर्थंकर के प्रश्नों के जवाब देना, हर एक प्रश्न का उनकी सास के सभा में वो हर चीज़ का समाधान देने लगती हैं, देवियाँ तक प्रश्न उत्तर करती हैं, उन सबके समाधान देती हैं। इस तरह से बहुत स्पेशल का वर्णन दिया माता
की। मतलब वो निहार जो जन्म से रहता है कि गर्भ आने के बाद,
ये जो है क्लियर नहीं हो रहा कि माता पिता जो है जन्म से ही इस तरह क्वालिटी होती है तीर्थंकर के पैदा होने के बाद, ये अभी क्लियर नहीं, पर होता है तीर्थंकर की मान को ध्यान में। सूतक वूतक नहीं लगता कोई भी, उनके जन्म का कोई 45 दिन का सूतक लगेगा, ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको इसका। जी
गंदगी
नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तीर्थंकर ऐसे पैदा होंगे कोई जरायु और उसमें लिपटे हुए नहीं कि रक्त मांस इत्यादि, कुछ भी नहीं होता, ये सब लिखा हुआ है। तो वो स्पेशल बॉन्ड, मतलब अपने से हट के प्रक्रिया, अपन जैसे पैदा होते वैसे नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, माता पिता के बारे में विशेष वर्णन और नहीं मिलता, पर फिर रुद्र, नारद और कुलकर और कामदेव, ये सब मिलकर के 169 महापुरुष बनते हैं। तो उसमें से अपन को लिखना पहले रुद्र के बारे में। रौद्रकारी करने वाले होते हैं रुद्र, रौद्रकारी करते हैं, देखो भक्त हैं, मोक्ष होगा इनका, इस जीवन में नहीं आगे, लेकिन इस जीवन में वो रौद्र कार्य करने में लगे। और दूसरा, ये 10 पूर्व के पाठी होते हैं, पर अध्ययन के समय विषय सेवन में प्रवृत्त हो जाते हैं, इसलिए भ्रष्ट हो जाते हैं और नरक जाते हैं। 10 पूर्व के पाठी होते हैं, पर 10 पूर्व लिख लो हम, पूर्व की परिभाषा, पूर्व एक प्रकार का ज्ञान है, पूर्व जो है वो एक प्रकार का ज्ञान है, इसको इंग्लिश में उसकी टर्मिनोलॉजी अपने पास होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, 10 पूर्व के पाठी होते हैं, पर अध्ययन के समय विषय सेवन में प्रवृत्त हो जाने से नरक जाते हैं। मतलब क्या होता है, 11 अंक और पूरा द्वादशांक ज्ञान, 12 अंक, अंक एक तरह का ज्ञान है, तो या उसको कहें एक चमत्कार या एक तरह का विशेष वो, तो उस अंग में 12वां अंग है, 12 अंग के 5 भेद हैं, 5 भेद में से एक भेद पूर्व नाम, और पूर्व के 14 भेद हैं। तो अक्सर अपन सुनते हैं 11 अंग 14 पूर्व, तो क्या होता है 11 अंग का पूरा ज्ञान हो जाता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, और मुनि बन के ही होता है, सामान्य नहीं कर सकता, तो लेकिन भीतर मिथ्या दृष्टि। फिर 10वां पूर्व पढ़ता है तो उसमें विद्याएं आती हैं, 1200 विद्याएं, उनका अगर उपयोग करके अपने भोग उपभोग में लग जाता है तो भ्रष्ट हो गया माना जाता है, और फिर नरकगामी होता। इतनी क्वालिटी होने के बाद भी चौथे काल में होते हैं सब, चौथे काल रुद्र, और रुद्र की उत्पत्ति अच्छी नहीं होती, उसके बारे में अगर कोई चर्चा नहीं करें तो ठीक है, क्या बाद में फिर जनरल लोगों के बीच में बता दूंगा। फिर रुद्र रौद्र कार्य करते हैं, 10 पूर्व के पाठी होते हैं, पर अध्ययन के समय विषय से गुण प्रवस्थ हो जाने से नरक जाते हैं। आगामी जीवन में मोक्षगामी भी है, ये भी लिखने साथ आगामी जीवन में, क्योंकि महापुरुष तो हैं पर फॉल्ट है तो फॉल्ट तो हो गई उनके लिए। पूर्व इनने जो है पूर्व को इंग्लिश में ये दिया, ए ग्रुप ऑफ 14 जैन कॉमिकल टेक्स्ट, क्या लिखेंगे, ए ग्रुप ऑफ 14 जैना कैनोनिकल टेक्स्ट, CANONICAL कैनोनिकल टेक्स्ट। ये 14 प्रकार का जो ज्ञान बताया है उसमें से वही ये पूर्व कहलाता है, ए ग्रुप ऑफ 14 जैना कैनोनिकल टेक्स्ट। ये रुद्र हो गए, फिर नारद के बारे में लिखिएगा। नारायण के समय में दूसरे को रुलाने में आनंद लेते हैं, कला और युद्ध प्रिय होते हैं। ये नारद जो है नारायण के समय में होते हैं, दूसरे को रुलाने में आनंद लेते हैं, कला और युद्ध प्रिय हैं। एक स्थान का संदेश दूसरे स्थान भेजने में माहिर होते हैं, चुगलखोरी। एक स्थान का संदेश दूसरे स्थान भेजने में माहिर होते हैं। जटा मुकुट लिखते हैं, जटा मुकुट कमंडलू यज्ञोपवीत गेरुआ वस्त्र, जटा मुकुट कमंडलू यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ गेरुआ वस्त्र और छत्र धारण करते हैं, छत्र रहता उनके हाथ में, छत्र लगाए नारद के लिए। जटा मुकुट कमंडलू यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ गेरुआ वस्त्र और छत्र धारण करते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, ये भी है बाल ब्रह्मचारी होते हैं, पर धर्म में रत होते हुए भी हिंसा के कार्यों में आनंद लेते हैं, इसलिए नरक जाते हैं। धर्म में प्रवृत्त होते हुए भी हिंसा के कार्यों में लड़ाने भगाने के मजा लेते हैं, इसलिए नरक जाते हैं। पर जिनेंद्र भक्त होने से परंपरा से मोक्ष भी जाते हैं बाद में, जिनेंद्र भगवान के प्रति बहुत भक्ति रहती है, उपद्रव नहीं छूटा। तो ब्रह्मचारी होते हैं, धर्म में रत होते हुए भी हिंसा के कार्य में आनंद लेते हैं, इसलिए नरक जाते हैं। जिनेंद्र भक्त होने से आगामी काल में मुक्त भी है। ये 11 होते हैं, नहीं 9 होते नारद, रुद्र 11 नहीं, रुद्र 11
नारद।
नारद ने जाके तो हनुमान जी को बताया था, तो हनुमान जी जो है रामचंद्र जी का फेवर छोड़ करके लवकुश के पास आ गए थे, और लवकुश को जो है इनमें लड़वाने के लिए इन्हीं ने प्रेरित किया था। लवकुश को कि तुम्हारे रामचंद्र जी वे रामचंद्र जी हैं जिनने सीता जी को तुम्हारी माँ को जो है ना छोड़ दिया था, इनको मालूम ही नहीं था, तो पहले उनको भड़का दिया, और फिर बाद में हनुमान जी को भी कह रहे कि ये रामचंद्र जी का पक्ष ठीक नहीं है, तुम तो लवकुश के साथ हो जाओ, ये मोक्षगामी हैं जीतेंगे तो इनकी तरफ करवा दिया, और फिर दोनों का मिलन करवा दिया तो भी मजा ले लिया, ये भी सीता से मिलन करवा दिया। फिर सीता वहाँ पर उसमें पढ़े अपन, सीता वहाँ परेशान हो रही कि लव कुश भी गए हैं और रामचंद्र जी से रहते गए हैं, क्या होगा, तो जाके कहते कोई तो कुछ नहीं होगा, सब शांत बैठे सब तब कुछ क्या है। ये उनको ज्ञान रहता है इस तरह का, ये हो गया रुद्र नारद। अब देखिएगा कामदेव, कामदेव 24 होते हैं, अनुपम सौंदर्य के धारी, वज्र वृषभ नाराज सहनक, ये उनकी विशेषता वज्र का शरीर होता है, अनुपम सौंदर्य के धारी वज्र वृषभ नाराज सहन या वज्र का शरीर देख लीजिए, बजरंग बली बोलते हैं वज्र का अंग धारी बजरंग बली या पवन सुध बोलते हैं, तो पवन के पुत्र थे पवन इंद्र, अनुपम सौंदर्य धारी और क्या लिखा वज्र वृषभ नाराज के तद्भव मोक्ष धामी अर्थात उसी जीवन में मोक्ष जाना है 24 के 24। बस इतने ही परिचय काम दे कुल का 14 होते हैं ये भूत भूमि के काल में होते हैं कुलकर, जैसे नाभी राय अंतिम कुलकर थे, ऋषभ देव के पिता नाभी राय अंतिम कुलकर थे, कुलकर थे। कुलकर की परिभाषा क्या है, सज्जन पुरुषों को एक कुल अर्थात कुटुंब की भांति इकट्ठे रहने का उपदेश देने वाले कुलकर के नाम है। सज्जन पुरुषों को एक कुल अर्थात कुटुंब की भांति, कुल मतलब कुटुंब, एक कुल अर्थात कुटुंब की भांति एक साथ इकट्ठे रहने का उपदेश देने वाले महापुरुष, एक साथ इकट्ठे रहने का उपदेश देने वाले महापुरुष कुलकर कहलाते हैं। तीसरे काल में तो होते ही परिभाषा तो इतना ही हम ध्यान में रखेंगे। इनको मनु भी कहते हैं, ये मनु कहलाते हैं। इतना पूरा हो गया अपने महापुरुषों के बारे में। अब पूजा के बारे में पढ़ना है, ध्यान और योग के बारे में पढ़ना है और ध्यान में लगाना थोड़ा सा। कुछ वो कह रहे थे कि इतिहास के बारे में, जैनों का इतिहास के बारे में एक आप हो गया सिमट गया पूरा उसकी जनरल नॉलेज तो
कुछ ग्रंथों की जानकारी।
हाँ कुछ ग्रंथों की जानकारी
जी, कल आपने बताया था नारायण जो होते हैं वो चक्रवर्ती से वैभव में आगे होते हैं।
वैभव में आदि मतलब लगभग ऐसा नहीं, 16,000 रानियां होती हैं, 96,000 की
रत्न वगैरह
जो है उसका। वो रत्न तो तीर्थंकर को तो उससे अपार वैभव होता
है।
नारायण के लिए रत्न वगैरह नहीं होते,
नहीं
होते। चक्रवर्ती का जो 6 खंड है उसमें से 3 खंड मतलब आधा हुआ, पर बाकी हाँ बाकी वैभव आधा एकदम एग्जैक्ट ही नहीं होता। मैं बोल तो गया था फिर बाद में सोचा कि एग्जैक्ट ही
आधा
नहीं, वो कुछ नहीं, उनके पास अलग निधियाँ होती हैं। हाँ वो लिखी तो थी, मैंने लिखा है इनकी माता को भी स्वप्न आते हैं अलग अलग, 4 किसी को 2, ये मैंने कहा बहुत डिटेल हो जाएगा इसलिए नहीं लिखा है, तो मैं लिखवा सकता हूँ। नारायण के लिए 16,000 रानियाँ, सुदर्शन चक्र, गदा, खड्ग, शक्ति, धनुष, 5 जन्म, शंख, महामणि, ये जो है 3 लोक का आधिपत्य, 3 खंड, इतनी चीज़ें होती नारायण और प्रतिनारायण दोनों में लिखना होगा। हमने इसलिए नहीं लिखवाया था कि कठिन न पड़े ज्यादा। महातीर्थंकर के बारे में विशेष जानना चाहिए और चक्रवर्ती के बारे में, क्योंकि मोक्षगामी ये तो नरकगामी है, उस वजह से जो है विशेष। 16,000 रानियां लिखना है, सुदर्शन चक्र तभी तो वो चला देते ना, सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास था ना नारायण थे, सुदर्शन चक्र, गदा स्पेशल, खड्ग, शक्ति, शक्ति फेंक दी थी प्रति नारायण ने नारायण के ऊपर, शक्ति, सुदर्शन चक्र, गदा, खड्ग मतलब तलवार, शक्ति, धनुष स्पेशल होता है धनुष, 5 जन्म संख होता है, हाँ जो बोल उसका नाम 5 जन्म है, 5 जन्म संख, महामणि होती, इतनी चीजें उनके पास होती
है।
प्रतिनारायण सेम है, साथ हो गए रत्न नहीं, ये रत्न उनके पास, ये निधियां हैं।
यही
प्रतिनारायण से फिर मालूम क्या होता, फिर चक्र जो है जब प्रतिनारायण चलाता है नारायण के ऊपर, प्रतिनारायण के यहाँ पैदा होता चक्र, नारायण पे चलाता है तो वो नारायण के हाथ में आ जाता है, तो तय हो जाता कि ये नारायण है, फिर नारायण आवाहन करते चक्र का, तो प्रतिनारायण खत्म होता है। ये मारता प्रतिनारायण है नारायण को, शक्ति वो ही चलाता, लेकिन वो शक्ति प्रतिनारायण जैसे आकर के नारायण में समा जाती है, नारायण को कुछ बिगड़ता नहीं।
शक्ति
अलग होती, शक्ति अलग हो चक्र
होता है,
एक ही चक्र होता है जो प्रति नारायण के पास होता है, प्रति नारायण नारायण को मारने के लिए चलाता है, तो वो आकर के नारायण की चिंटी में स्थापित हो जाता है, चक्र लगा के, चक्कर लगा के कि आप मेरे स्वामी तो आप हैं नारायण, अब आप आवाहन करिएगा मेरा, तो वो आवाहन करता है, तो प्रति नारायण को जाकर समाप्त कर देता, चक्र हो जाता, खेल खत्म, खत्म हो गया। अपने यहाँ पर ऐसा नहीं आता कि रामचंद्र जी ने मारा हो, नहीं रामचंद्र जी नहीं मारते, रावण ने, लक्ष्मण ने मारा रावण को, और बाकी सब में चलता है कि रामचंद्र जी ने मारा, रामचंद्र जी ने बाली को भी नहीं मारा, बाली तो मुनि महाराज जी हो गए, इन लोगों के में आता कि बाली को मार दिया, बाली तो मुनि महाराज जी हो गए, विरक्त हो गए, रावण को हरा दिया था, फिर विरक्त मान्यता है अलग अलग, वर्तमानी योग भी पढ़ने लगे, एक है मेरे पास छोटी किताब, कल देख रहा था राम कथा करके शॉर्ट में, जैन राम कथा, वो निकाल दिया, वो पढ़ने लगे शॉर्ट, मतलब ऐसा पढ़ना क्या
है, कुछ नहीं
पढ़ना, हम तो पढ़ेंगे धर्म ध्यान तो करेंगे, रोएंगे थोड़ी, रोएंगे थोड़ी 10 बजे तक, इसमें तो संस्मरण क्या सुनाएं, बहुत सारी चीजें हैं, के साथ के जो भी संस्मरण है वो सब बहुत संवेदनशील है, तो उसको मैं स्मरण भी नहीं करता हूँ तो फिर मेरा गड़बड़, लिख लिए हैं मैंने सब, कोई पढ़ देते तो ठीक है, मैं सुनाता हूँ तो फिर मुझे पूरा याद आ जाता है, तो जो भी संवेदनशील क्षण आचार्य श्री के साथ गुजरे हैं तो वो सब ये वहीं से मैंने चीज सीखी कि किसी से कुछ नहीं पूछना उसके चारित्र के मामले में, वो क्या करता है क्या नहीं करता है उसके चारित्रिक मामले में कभी कोई टच मत करना, व्यसनी है तो वो अपनी तरह से, हमें क्या करना, मालूम भी पड़ जाए तब भी उसके बारे में मन खराब नहीं करना कि ये क्यों व्यसनी है, क्योंकि साधु बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं देता ना, कभी मैं उनको 76 से उनके पास जाना शुरू किया था और आहार देने की प्रक्रिया में शामिल हुआ, तो एक बार तो बहुत कड़ा जवाब दे दिया था मैंने वहीं पर चौकी में बाहर आकर के, एक व्यक्ति बोले कि आपका रात्रि भोजन का त्याग है, महाराज जी को आहार देने लगे हैं, तो मैंने आहार तो नहीं दिया वहाँ पर क्योंकि मेरा मन खराब हो गया, तो मैंने कहा मन शुद्धि का है कि नहीं उनके इतना कहने से कि आपने रात्रि भोजन का त्याग करा कि नहीं, मेरा मन खराब हुआ तो मैं धीरे से बाहर आया, मैंने कहा मिस्टर मैं आपको आहार नहीं देने आया, जब आपको देने हो तो आप पूछिएगा, मैं अच्छे शुरू हो वो तो पूछ नहीं रहे, वो कभी नहीं पूछा उन्होंने मेरे से। तीन साल तक मैं हर हर हफ्ते जो है जाते थे और चौका लगाएंगे, बाद बाद में तो अपने हाथ से सारा कुछ बनाना, अपने हाथ से आटा पीसना, चक्की वो ला करके सब बनाना, पूरी रसोई बना करके और फिर करवाना, वो आनंद अलग आता था। और अगर आजेश जी का नहीं हुआ तो सबको इन्वाइट करते थे जिनके यहाँ आहार हुआ है उनको, आपका आजेश जी गया, आपके यहाँ आजेश जी का हुआ, आप हमारे यहाँ खाना खा लीजिए, हम आपके यहाँ खा लेंगे, आपका बचा रहेगा, ये शुरू हो गया था वहाँ से। तो मैंने जो तो उस समय से मैंने ये चीज़ देखी कि आजेश जी ने कभी भी नहीं पूछा, तो मेरी हैबिट में भी नहीं पूछते नहीं। हाँ, कभी कोई डाउट हो जाता है, डाउट हो जाता है और सही निकलता है तो पूछ लेता हूँ, ये रुक जाता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो नहीं पूछता हूँ, ठीक है जिसको जो करना। और अभी तक का तो रिकॉर्ड है कि किसी ने भी त्याग न किया हो आहार दे के, ऐसा हुआ नहीं। एक आध एक्सेप्शन जिसने यही सोच के आया हो कि मैं तो देऊंगा और ये कुछ पूछते नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, जो ये तय करके आया हो तो बात है, अन्यथा ग्रास रखने के बाद उसमें ज़रूर से हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ अपने मन से, मैं बाद में सुन लेता हूँ कि भले उसने कुछ भी एक दिन के लिए भी छोड़ा हो, लेकिन छोड़ा, त्याग की भावना जागृत होती है, वही सही है। पास बैठ करके मैं तीन साल तक आस पास में बैठा उनके एकदम, तो हर चीज़ हर प्रश्न का कैसे जवाब देते हैं, मैं तो एक बार प्रश्न का कड़ा भी जवाब देता हूँ, अभी वो चीज़ नहीं आई मेरे अंदर, तो वो हर मैंने खराब से खराब प्रश्न कोई कर देगा उनसे तो भी वो बहुत शांति से जवाब देते, या फिर चुप रहे कुछ नहीं बोली या फिर थोड़ा सा जवाब देते। एक बार ऐसे ही बैठे थे जबलपुर में, तो मैं भी, हम लोग को ये है कि आहार करके जाएंगे तो आचार्य श्री को नमस्तु करेंगे, बताएंगे कि ठीक हो गया या अंतराय हो गया, ऐसा करके तो वो आशीर्वाद देंगे। अगर हम उसी समय पहुँचे और आचार्य श्री आए तो जो कमंडल लेके आ रहे थे वो सब खुश थे लोग, एक व्यक्ति उतने सबके बीच में बोलता है, चल हो महाराज जी ठीक है, बड़े आदमियों को है जो तो सब काम, कोई कहते हफ्ता भर में दो दो बार और कोई कहीं एक भी बार नहीं, दस दस दिन हो गए, ऐसा जो है डायरेक्ट आचार्य श्री से, इतने बड़े आचार्य श्री से। तो मैंने सोचा अब मैं तो मिला गया एकदम कि मैं तो इनको भैया जवाब देता, अब भी आचार्य श्री के सामने चुपचाप बैठे रहा, 84 की बात है। मैंने कहा देखें आचार्य श्री क्या कहते हैं, आचार्य श्री ने बहुत शांति से, सब वेट कर रहे हैं कि क्या कहते हैं आचार्य श्री, सो दो पाँच मिनट रुक करके बोले, कहने लगे भैया उनके जैसे भाव तुम बनाओ, तुम्हारे रोज होंगे हम आशीर्वाद, उनने जैसे भाव बन, बस सरल सा से जवाब दे, कितना इजी, उनके जैसे भाव तुम बनाओ, तुम्हारे यहाँ रोज होंगे हमारे आशीर्वाद, लेकिन भाव तो बनाओ उनके जैसे। तो इस तरह से वो उनके जवाब देने का ढंग, एक बार जरूर उनने कड़ा जवाब दिया जो इसी के बाबत किसी ने कह दिया कि आप जाते हैं और किसी के, ये जस्ट इसी तरह का कि किसी के यहाँ हो ही नहीं रहे हो, किसी के यहाँ पर रोज रोज हो रहे हैं या कर्मचारी बहनों के हो रहे हैं, तब जो है एक व्यक्ति से उन्होंने कह दिया था कि देखो ऐसा करो मेरा पीछे कमंडल ले लो, कल तुम, मैं नहीं उठूंगा तुम उठना, हम देखेंगे कहाँ जाते हो, वो फिर बाद में कह देंगे कि मैं तो मालूम था यहीं जाओगे, इतना कहने में क्या देखेंगे, या तुम्हारे कोई रिश्तेदार है इसलिए गए, हम भी कह देंगे। वो एक बस एक बार जवाब जरा सा उल्टा दिया था, नहीं तो ये बहुत अच्छा जवाब था कि वैसे भाव करो भी होंगे, ऐसी कई समस्याएं आती हैं आचार्य श्री के सामने और वो सावधानी से आसानी से पत्र आ जाते हैं, पढ़ते नहीं एक तरफ डाल देते हैं, जिसमें राग द्वेष होता है उस किसको टच ही नहीं करता, ये सबसे बड़ी विशेषता। अनुशासन भी उतना ही कड़ा है लेकिन वात्सल्य भी उतना ही है, जब तकलीफ होगी तो उठ करके आ जाएंगे, नहीं तो एक शिष्य के लिए इतने बड़े आचार्य को उठ के आने की आवश्यकता नहीं, मैं तो यही सोचता हूँ। मैंने आर जी में था और मुझे बहुत अधिक तकलीफ हो गई, उन तक संत पहुँच गया तो वहाँ से आगे बोले तो चलो सब लोग बाहर, क्योंकि संकोच लगेगा, सब हमको संकोच लगेगा तो सब फिर अपने हाथ से जो है वो तेल की शीशी मंगा करके थोड़ा तेल लेकर फिर मेरे जो है कैया भक्ति करने के लिए शुरू किया, तो मैं तो एकदम हड़बड़ा गया, कहाँ तबीयत एक खराब, कहाँ बुखार 105, सब भूल भाल गए, मैं खड़े हो गया उठ करके, मैंने कहा नहीं आप तो ये मत करिएगा नहीं तो मैं तो मुश्किल में पड़ जाऊँगा, बहुत नहीं मानी वो तो आगे पूरा सेवा में मेरे आंसू निकलते जाए और वो करते चले गए, ठीक हो गए, फीवर इवर कहाँ फीवर होता है एकदम। तो ऐसी कई घटनाएँ, मैंने 10-25 घटनाएँ ऐसी मेरे लाइफ से, केस लॉन्च नहीं बन रहा है तो केस लॉन्च कर दिया शुरू। जबकि सबको अपना अपना कल्याण करना है, देखना अपन कह देते हैं कि सबको अपना अपना कल्याण करना, लेकिन दूसरे के कल्याण में सहायक बनना भी कम की बात नहीं है। यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावासिदसिता
यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावासिदसिता
समं कान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो
साक्षी मार्ग प्रकटन परो
कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति बाह्यन्तरमपि मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयीवाति विमला महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे
महावीर स्वामी
केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम्
नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम्
लसत् पादाम्भोज द्वयमिहि अदीयं तनुभताम्
लसत् पादाम्भोज
ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वायुस्ततमपि
ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वायुस्ततमपि
महावीर स्वामी नयन पत्रगामी भवतु मे
महावीर स्वामी
यदल्चाभावेन प्रमुदितमनादर्दुरहितः
यदल्चाभावेन प्रमुदितमनादर्दुरहितः
क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा
लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा
महावीर नयनपथगामी भवतु मे
महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।
यदल चाभा कन स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान निबहु विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापी श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला
यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला
ब्रह्मज्ञानां भोविर् जगति जनतां जाय स्नपयति
ब्रह्मज्ञानां भोविर् जगति जनतां
ेषा बुधजनमरालैः परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
महावीर स्वामी नयन पथगामी
त्रिभुवन जयी काम सुभता कुमारावस्थाया निज बलाद्येन विदिता नित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सदिनः
नित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सदिनः
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
महामोहातङ्क प्रशमन पराकस्मिगभिष
महामोहातङ्क प्रशमन पराकस्मिगभिष
निरापेक्षो बन्धुर् विदित महिमा मंगलकर
निरापेक्षो बंधुर् विदित महिमा मंगलकर
शरण्यः साधूना भवभयभ्रतामुत्तमगुणो
शरण्यः साधूना भवभयभ्रतामु
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
महावीराष्टकं स्तोत्रम्
महावीराष्टकं स्तोत्रम्
भागेन्दुना कृतम्
भाग्या भागेन्दुना
पठेक्षणु याचापि सायाति परमां गतिं
याद आ गया कह रहे थे वो तो संस्मृत किसी यही शाम को बैठे थे अध्यक्ष के पास में और लोगों ने कहा कि इनसे भजन सुनिए जाते हैं मैंने कहा मुझे नहीं आता अध्यक्ष जी आप सुनाएंगे सुनाइएगा फिर उन्होंने एक भजन सुनाया मैं तो दूसरा मैंने कहा ठीक मैं सुनाता हूँ सुना दिया जैसे सुनाया तो बोले कि इसको ऐसा गाते हो तुमने तो मैं तो ऐसे ही गाता हूँ तो फिर उन्होंने मेरा जो सुनाया था उसको दूसरी राग में सुनाया और उत्तम हो गया टाइम बिल्कुल ऐसे ही और वो उधर मंदिर में सोते थे रात्रि में शाम को दहनाल में सुख के मंदिर में चले गए मैं उस समय ज़्यादा एज नहीं थी फिर भी तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी तो क्षमा रहेगी मतलब नाराज नहीं हो गया ऐसे फिर चले जाओ भीतर लाइट जला देना भीतर की लाइट जला तो मैंने जैसे भीतर पैर रखा और आदर्श वन से बोलते कि हाँ भीतर की जला लो बस वो सेंटेंस अभी तक जो है उसके बाद फिर मैं वापस लौटा लोग तो नहीं समझ पाए मैंने कहा मैं समझ गया कि भीतर की जला दो आपने कहा था सबने और मैं भीतर जाने लगा तो बोलो भीतर की जला दो इधर की लाइट जलाने की अपेक्षा सेंटेंस बोल दिया था उस समय मुझे याद आ गया बीच में जब पढ़ रहे थे
Thank you.